उस रहस्यमय किताब को देखकर अमन खुश हो गया था। जैसे ही वो उसे छूने के लिए आगे बढ़ा, उसमें से जोरदार रंग बिरंगी रोशनी निकलने लगी और अमन को बहुत भयानक जानलेवा करंट लगा। वो दूर जा गिरा। तारापरी एकदम से चिल्लाई और अमन के पास पहुंचकर उसे उठने में मदद करने लगी। अमन को ऐसा लग रहा था मानो 440 वोल्ट का झटका लगा हो। तारापरी ने उसे संभाला और कुछ देर में अमन को थोड़ा बेहतर लगने लगा। वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तारापरी ने पूछा, आप ठीक हैं? अमन ने हाँ में सिर हिला दिया। तब तारापरी ने अमन पर तंज करते हुए कहा, देखा, बिना सोचे समझे काम करने का ये भी भयंकर परिणाम हो सकता है। बड़े बूढ़ों की कहावत है, जो भी काम करो उसे 100 बार सोच विचार कर करो। तारापरी की बात सुनकर अमन उसे गहरे गुस्से भरी नज़रों से घूरने लगा। तारापरी ने उसकी आंखों में गुस्सा देख लिया और जल्दी से बात बदलते हुए बोली, मेरा मतलब था, आपको उस रहस्यमय किताब को यूं ही नहीं छूना चाहिए था। आपको सोचना चाहिए था कि ये कोई मामूली किताब नहीं, बल्कि तिलस्मी कड़े की किताब है। तब अमन तल्ख लहजे में बोला, अच्छा, अगर यूं नहीं छूता तो कैसे उसे उठाता मिस तारा? और वैसे भी आपके पास तो कुछ ज्यादा ही दिमाग है, तो क्यों ना एक काम किया जाए, क्यों ना आप कोशिश कर लें, हमें भी देखते हैं कितना दिमाग है आपके पास। बिना करंट लगे आप खाली अपना दिमाग लगाकर कैसे इस किताब को बिना करंट लगे उठा पाती हैं? ऐसा कहकर अमन दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो गया और तारापरी को घूरने लगा। वहीं तारापरी ने कहा, ठीक है, आपको क्या लगता है कि मैं वो किताब नहीं उठा पाऊंगी और मुझे भी आपकी तरह ही करंट लग जाएगा? अगर ऐसी बात है तो मैं आपको वो किताब उठाकर जरूर दिखाऊंगी और तब आपको पता चलेगा इंसानी दिमाग में कितनी शक्ति होती है। अच्छा जी, चलो हम भी देखते हैं, अमन ने उसे चुनौती देते हुए कहा। तब तारापरी उस रहस्यमय किताब के पास गई और देखा कि किताब के पास जाते ही उसके हाथ में पहना हुआ कड़ा चमकने लगा। तारापरी के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने जिस हाथ में कड़ा पहना हुआ था धीरे धीरे वही हाथ उस किताब की ओर बढ़ा दिया। जैसे ही उसने उस कड़े वाले हाथ से किताब को छुआ, वो किताब जोर जोर से चमकने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कड़े और किताब की शक्तियां आपस में जुड़ गई हों। और फिर जल्दी ही वो तिलस्मी किताब एक जोरदार रोशनी के साथ चमकना बंद करके तारापरी के हाथ में आ गई। अमन अपनी आंखें बड़ी करके कभी तारापरी को देखता तो कभी उस किताब को। तारापरी भी विजयी मुस्कान के साथ अमन को देख रही थी। उसने आंखों ही आंखों में बता दिया कि वो जीत चुकी थी। तब तारापरी ने देर न करते हुए जल्दी से अमन से कहा, आप वहां खड़े खड़े ही देखते रहेंगे या जल्दी से आकर इस किताब को पढ़ोगे भी? ये सुनकर अमन जल्दी से तारा के पास गया और तारा ने उसी हाथ से जिसमें उसने कड़ा पहन रखा था किताब का पहला पेज खोला। तब अमन ने देखा कि उस पेज पर सुनहरे अक्षरों से कुछ लिखा हुआ था, लेकिन उस लिखे हुए की भाषा वो समझ नहीं पाया, लेकिन तारापरी उस पेज पर लिखे हुए को आराम से पढ़ सकती थी। उसने कहा, सर, ये भाषा मुझे आती है, मैं पढ़ सकती हूँ ये क्या लिखा हुआ है। तब अमन उसे चौंक कर देखने लगा और हाँ में सिर हिला दिया। तारापरी ने पढ़ना शुरू कर दिया। उस पहले पेज में लिखा हुआ था कि ये तिलस्मी कड़ा बूढ़ी माँ का कड़ा है, जिसके पास इस दुनिया और उस दुनिया दोनों जहाँ का ज्ञान था। ये कड़ा जिसके भी पास होगा ये उसकी हर वक्त रक्षा करेगा, और अगर उस कड़े के मालिक की खून की एक बूंद उस कड़े पर डाल दी जाए तो उस कड़े में असीम शक्तियाँ आ जाएंगी और वो जिसे भी निशाना बनाकर उस पर हमला करेगा उस आदमी की मौत 11 घंटों के अंदर अंदर होकर रहेगी। लेकिन अगर कभी किसी बेगुनाह पर इस कड़े के द्वारा गलती से वार हो जाए, तब उस इंसान को अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बूढ़ी माँ की रोटी होगी। और जो कोई एक बार बूढ़ी माँ की रोटी ले आएगा और उस इंसान के जख्म पर रखेगा, तब कुछ ही पलों में वो इंसान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये पढ़कर अमन को एक उम्मीद सी जागने लगी। इसी के साथ पहला अध्याय पूरा हो चुका था। अमन ने तारापरी से कहा, जल्दी से दूसरा पेज खोलो और पता करो कि ये बूढ़ी माँ की रोटी कहाँ मिलेगी। तारापरी ने हाँ में सिर हिलाया और अमन के कहने पर तिलस्मी कड़े की मदद से दूसरा पेज पलटा और उसे अच्छी तरह से देखना शुरू कर दिया। तब उसने देखा कि उस पेज पर एक और अलग भाषा में कुछ लिखा हुआ था। अमन ने कहा, अब क्या करें, इसमें तो इस भाषा से भी अलग और कठिन भाषा में लिखा हुआ है। तब तारापरी ने कहा, सर, ये भाषा भी मुझे आती है। अमन उसे हैरानी से देखने लगा। जिस भाषा को ना तो उसने कभी पढ़ा था और ना ही कभी देखा था, वो भाषा तारा को कैसे आती है? तब अमन ने अपने मन में आए सवालों को मन में ही रहने दिया और उससे कोई सवाल नहीं किया। उसने कहा, अगर तुम्हें भाषा आती है तो सोच क्या रही हो, जल्दी पढ़ो। तब तारापरी ने उस भाषा को पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा हुआ था कि अगर किसी बेगुनाह की जान बचाने के लिए बूढ़ी माँ की रोटी की जरूरत हो तो वो रोटी यहाँ से 100 कोस दूर काली पहाड़ी के जंगल को पार करने के बाद एक बड़ा सा झरना दिखाई देगा और उसी बड़े से झरने के नीचे एक सफ़ेद बालों वाली बूढ़ी माँ रोटी पकाती हुई दिखाई देगी। और याद रहे, वो बूढ़ी माँ अपनी सारी रोटियाँ आग से सेकने के बजाय पानी से सेकती थी। उसी बूढ़ी माँ से वहाँ जाकर निवेदन करना होगा, अपना सच उन्हें बताना होगा। और याद रहे, अगर किसी तरह का झूठ, फरेब या मक्कारी लेकर उनके पास गए तो वो बूढ़ी माँ एकदम से पहचान लेगी और उसी पल अपनी आंखों से सामने वाले को भस्म कर देगी। तारा परी ये सब पढ़कर डरने लगी। वहीं अमन भी काफी घबरा गया और वे दोनों उस किताब को वहीं तहखाने में सुरक्षित रखकर ऊपर करिश्मा जी के पास पहुंच गए। करिश्मा जी उन दोनों को देखते ही बोली, क्या हुआ बेटा, किताब मिली, कुछ पता चला, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? करिश्मा जी ने तड़प कर पूछा। करिश्मा जी ने अमन का सिर अपनी गोद में रखा हुआ था और उस कड़े के घाव को एक लाल रंग के कपड़े से ढका हुआ था। तारा परी ने करिश्मा जी को बता दिया कि काली पहाड़ी के जंगलों को पार करके ही एक झरना आएगा। उस झरने में एक बूढ़ी माँ पानी से रोटी सेक रही होगी। उन्हीं की रोटी मान का मरहम होगी। अब मान केवल उस बूढ़ी माँ की रोटी से ही ठीक हो सकते हैं। अमन आंखों में आंसू लिए अपने भाई को ही देख रहा था। तब करिश्मा जी ने कहा, वो जगह तो यहाँ से कोसों दूर है और उस जगह पर पहुंचने के लिए काली पहाड़ी को पार करना होगा, जो बेहद खतरनाक है। और बेटा, उस पहाड़ी पर तो काली शक्तियों के गुरु महाराज कैद हैं, जिन्हें तेरे दादा जिन महाराज ने कैद किया था। अगर उन्हें पता चला कि जिन महाराज का वारिस वहां से गुजर रहा है, तो वो जरूर कुछ न कुछ करेगा। वो पूरी कोशिश करेगा तुम्हारी जान लेने की। नहीं नहीं बेटा, नहीं, मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी। मेरा एक बेटा मौत की कगार पर है और दूसरे को मौत के मुंह में मैं नहीं जाने दूंगी, करिश्मा जी ने तड़पते हुए कहा। अमन ने कहा, नहीं मॉम, आप कुछ भी कहें, मुझे जाना होगा और वो तिलस्मी रोटी ले आनी होगी। वही रोटी अब मेरे भाई की जान बचा सकती है। मैं अपने भाई की इस हालत का जिम्मेदार हूँ। अगर आज मान को कुछ भी हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा और ना ही कभी एक पल चैन से जी पाऊंगा। लेकिन करिश्मा जी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी तारा परी बीच में बोल पड़ी, करिश्मा मैम, अमन सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें वहां जाना होगा और मान जी के लिए वो तिलस्मी रोटी लानी होगी। और आप फिक्र न करें, मैं भी अमन सर के साथ जाऊंगी, तारा परी ने बड़ी ही हिम्मत से कहा।
करिश्मा जी उन दोनों की बात सुनकर सोचने लगी और बोली, लेकिन बेटा, इतनी जल्दी तुम दोनों वहां कैसे जाओगे? तारा बेटी ने मुझे बताया है कि उस किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि तिलस्मी कड़े के वार के बाद इंसान केवल 11 घंटे तक ही जीवित रह सकता है, और 11 घंटे में से एक घंटा तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तुम लोग इतनी दूर कैसे जाओगे? भला 100 कोस दूर का सफर इतनी जल्दी कैसे पूरा होगा? तभी तारा परी मन ही मन सोचने लगी, मैं भी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मदद करने से पहले मुझे अपना सच इन लोगों को बताना होगा। शायद अब टाइम आ गया है अपना सच इन लोगों को बताने का। वैसे भी मेरे लिए इस वक्त अपना सच छिपाने से कहीं ज्यादा मान की जान बचाना जरूरी है। तारा परी कुछ सोचते हुए ही थीं कि तभी करिश्मा जी बोल पड़ी और अमन से बोली, बेटा, एक रास्ता है जिससे तुम दोनों एक साथ वहां चलोगे भी और सुरक्षित वापस भी आओगे, वो भी बहुत जल्दी। ये बात सुनकर तारा परी और अमन दोनों चौंक गए। तब अमन ने कहा, लेकिन माँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके द्वारा हम लोग इतनी जल्दी आ जा सकते हैं? तब करिश्मा जी ने एक तकिया सिर के नीचे लगाया और उठकर बोली, आओ बेटा, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर करिश्मा जी उन दोनों को अपने साथ अपने कमरे में ले आईं। अपने कमरे में जाकर करिश्मा जी ने अपनी कपड़ों की अलमारी के ऊपर से एक बहुत बड़ा सूटकेस नीचे उतारा। इस सूटकेस पर एक सफ़ेद रंग का कपड़ा डाला गया था। करिश्मा जी ने बड़ी ही सावधानी से वो कपड़ा उतारा और अमन और तारा परी ने देखा कि उस कपड़े के हटाने के बाद उसके ऊपर कुछ पंजे जैसा निशान सा था। तारा परी ने उस निशान को देखकर पूछा, लेकिन मैम, ये निशान कैसा? तब करिश्मा जी ने कहा, बेटा, ये निशान नहीं है बल्कि एक पासकोड है जिसके द्वारा इस सूटकेस का मुँह खुलता है।